قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى. اب اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، دیا گیا جو تُو نے مانگا اے موسیٰ. آپ سوچے تو صحیح کہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر. کیا مطلب ہے کہ اے موسیٰ تیری درخواست منظور ہو گئی، تیری بات میں بڑا پیار تھا، تیری درخواست میں بڑی التجا تھی، تو اب منظوری جو ہے اس کے الفاظ میں بڑی شان و شوکت جھلک رہی ہے اللہ کی، ہے نا، کہ دعا کے الفاظ ختم ہوتے ہی بشارت دے دی گئی کہ تیری درخواست منظور، بغیر کسی توقف کے، بغیر کسی استثناء کے، سب کچھ منظور، ہے نا. تو مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، کہ موسیٰ جو تُو نے مانگا تجھے عطا کیا. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، ساتھی کہا ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ، ہم نے تجھے نوازا، نوازش کی، احسان کیا، مرتن اخرا، پھر ایک مرتبہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایک کر کے اپنے احسانات یاد دلاتے ہیں کہ پیدائش کے وقت سے لے کر اب تک تجھ پر تو بڑے احسانات کیے ہیں، اور ان احسانات کی تفصیل آپ سورت قصص میں پڑھیں گی. یہاں صرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور اشارہ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اے موسیٰ ذرا یاد تو کر، تو احساس تو کر. موسیٰ علیہ السلام کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم یہ نبوت کے لیے، پیغمبری کے لیے تجھے پیدا کیا، تجھے اس کام کے لیے میں نے چن لیا تھا، تو آج تک میں نے خاص اپنے احسان، خاص اپنی نگرانی میں، سرکاری نگرانی میں تجھے جو ہے نا پالا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ کیا مطلب ہے اس کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، کہ دوسری مرتبہ پھر تجھ پر جو ہے وہ ایک احسان کیا، اور وہ احسان جو تھا وہ کیا تھا کہ تیری تو نگرانی، ہماری نگرانی میں تیری پرورش ہوتی رہی. اور وہ کیا تھی نگرانی؟ کہ وہ وقت تھا، ذرا سوچ تو صحیح، تو کن حالات میں پیدا ہوا تھا. بنی اسرائیل کے بیٹے قتل کیے جا رہے تھے، اور ان میں پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان میں جبکہ بنی اسرائیل کے بیٹے جو تھے وہ قتل کیے جا رہے تھے، اور جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے بچایا. اگر نیند آ رہی ہے تو کھڑی ہو جائے. جیسے اذ اوحینا الی امک ما یوحا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ وقت بھی تو یاد کرو کہ ہم نے اشارہ کیا الی امک، تیری ماں کی طرف، ما یوحا، وہ ایسا اشارہ جو کہ وحی کے ذریعے کیا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ مائیں جو تھی بچہ جننے پر، اور جب ان کو پتا چلتا تھا کہ بیٹا ہو تو پریشان ہوتی تھی کہ ابھی فرعون کے سپاہی آئیں گے اور بیٹے کو لے جا کر قتل کر دیں گے. آپ سوچیں کہ کتنا خوف جو تھا ان کے اوپر طاری رہتا تھا، کیسی سخت تکلیف دے عمل سے وہ عورتیں جو تھیں اور بنی اسرائیل کی قوم جو تھی وہ گزر رہی تھی. تو ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، اور یہ اشارہ جو تھا، یہ حکم جو ہم نے بھیجا، تو یہ کیا ہے، ما یوحا، جو ہم بتاتے ہیں کہ وہ حکم کیا تھا کہ کرو کیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے وہ سوئیں اور ان کو جیسے ایک خواب سا آ گیا، تو جیسے ان کے دل میں ایک بات آ گئی. اور بعض کہتے ہیں کہ جاگنے کی حالت میں ہی ان کے دل کی یہ کیفیت ہوئی کہ میں اپنے دل کو، میں اپنے بیٹے کو جو ہے نا ایسے کر دوں. تو اس اوہینا الی امی کا، تیری ماں کی طرف کیا اشارہ کیا، ما یوحا، جو کہ آگے بھی بتایا جاتا ہے، جو وحی کے ذریعے، جو الہام کے ذریعے بتایا جاتا ہے. اس سلسلے میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو اشارہ غیبی تھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو وہ وحی آئی جو کہ پیغمبروں کو آئی، یہ بلکہ القاء اور الہام کی ایک شکل ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں ایک بات ڈال دی اور انہیں اطمینان ہو گیا کہ یہ اللہ کی ڈالی بھی بات ہے، بس میں ایسے کر لیتی ہوں. ہے نا، آپ کو یہ بات پتا ہے نا کہ کوئی بھی عورت نبی نہیں ہوئی، جتنے بھی نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے وہ سارے کے سارے جو تھے وہ پیغمبر تھے، رجل تھے، آدمی تھے. آپ پہلے بھی یہ بات پڑھ چکی ہیں، تو یہاں پہ یہ وہی بات جیسے سورۃ نحل میں آپ شہد کی مکھی کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا تھا نا، تو ये वही बात है। तो अच्छा वो वही क्या थी, वो इशारा क्या था, वो इल्हाम क्या था जो इनके दिल में हुआ। अनिक जेफी ही फित ताबूती फक जेफी ही फिल यम्मी फल्युल कहिल यम्मु बिस्साहिली या खुजू अदुवुल्ली व अदुवुल्ला वल्कैतु अलैका महब्बतम मिन्नी वले तुसना अला ऐनी। तो पहली बात क्या कही, अनिक जेफी ही फित ताबूत, कि फेंक दे इस लड़के को ताबूत में। अब आप देखें क्या मतलब है कि इस बच्चे को संदूक में डाल दे। ताबूत किसे कहते हैं, संदूक को कहते हैं, है ना, उसमें इसको जो है वो डाल दे। फक्स फी ही फिलियम, और फिर वो जो संदूक है उसको डाल दे समंदर में। तो दो काम करने हैं कि बच्चा जो है इसको संदूक में और उस संदूक को समंदर में डाल दे। फल युल कहिल यमु, फिर समंदर क्या करेगा, फल युल कहिल यमु बिस्साहिली, तो वो यम पानी का जो बहुत बड़ा जखीरा है वो जो संदूक को लेके चलता रहेगा, और एक मुनासिब वक्त पर फिर वो इसको समंदर के किनारे पे, दरिया के किनारे पे लाके डाल देगा, साहिल पर डाल देगा। और जब वो साहिल पे डालेगा तो होगा क्या, या खुजहू, उठा लेगा इसको, पकड़ लेगा इसको, अदुवुल्ली मेरा दुश्मन व अदुवुल्ला और तेरा दुश्मन। मेरा दुश्मन और इस बच्चे का दुश्मन, व अदुवुल्ला। हूं की जमीर क्या बता रही है, कि मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है कि इस बच्चे का दुश्मन जो है वो इसको उठा लेगा। तो अब आप देखें कि अब ये अल्लाह ताला ने उनको जो है वो माँ को ये इशारा जो है वो किया। और इस सिलसिले में हमें क्या तफसील पता चलती है कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने जो है क्या किया। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा जो है इनका नाम रूहुल मानी, मशहूर तफसीर है उसमें इनका नाम यूहानस बताया जाता है, और इतकान ये भी एक तफसीर है इसमें इनका नाम लहयान बताया जाता है, और बाज लोग इनका नाम बारिखा भी कहते हैं, बारिखा। बाज कहते हैं नहीं बासखत था। तो बहरहाल यानी कोई भी नाम हो, लेकिन असल बात क्या है कि वो एक अच्छी औरत थी, नेक औरत थी, तो अल्लाह ताला ने उनके दिल में जो है ये बात डाल दी। और कहती हैं, कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जब उनके दिल में ये बात डाली तो उन्होंने अपने बच्चे को संदूक में डालकर समंदर की तरफ, समंदर के अंदर डाल दिया। अब ये बात वैसे बड़ी हैरत की लगती है ना, कि संदूक में डाला और फिर समंदर की लहरें। तो ऐसा करने से तो खुद ही कलेजा मुंह को आता है ना, कि कहीं पानी में डूब ही ना जाए। अब संदूक कश्ती भी नहीं है, जहाज भी, बहरी जहाज भी नहीं है, अब जरा तसव्वुर करें। लेकिन अल्लाह ताला ने उसके दिल को कितना इस बात पर इत्मीनान उसको नसीब किया कि उसने ये काम जो है वो किया। अच्छा इस सिलसिले में आप ये बात याद रखें कि सारे ऑर्डर के सीगे हैं, अनिक जेफी ही फक जेफी ही, है ना, और ये फल युल्के ही फिर या खुजू, तो गोया के ये अल्लाह ताला की तरफ से ये बात थी ना। और अब जो है जब माँ ने ऐसा किया कि उसको समंदर में डाल दिया, संदूक के अंदर डाल के, अब समंदर की लहरों के सुपुर्द था ताबूत और बहता चला जा रहा था। और बस यहां तक मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का काम था, अब ये खत्म हो गया। और कहते हैं कि अब उनका दिल माँ का घबरा रहा था, तो उसने अपनी बेटी से कहा कि तू जरा समंदर के साथ साथ चल तो सही कि संदूक जाता कहाँ है, होता क्या है। और अब जो है दरिया की मौजों ने ताबूत को दरियाए नील की उस शाख के रुख पर धकेल दिया जिस पर फिरौन का महल वाकया था। अब वो तो कहीं भी जा सकता था, लेकिन उसको एक लहर लेकर चलती हुई फिरौन के महल की तरफ निकली, और फिर उस जगह पर एक लहर उठी, और वो लहर इतनी जोरदार थी कि उसने ताबूत को साहिल पर फिरौन के महल के पास फेंक दिया। फिर इत्तफाक की बात कि ये जो ताबूत था ये फिरौन के सामने पेश किया गया, और फिरौन वो जो कि अल्लाह का दुश्मन और फिर मूसा अलैहिस्सलाम का भी दुश्मन है ना। तो अब आप देखिए कि यहां पर जो है वो अल्लाह ताला का ये कहना कि मेरा और तेरा दुश्मन जो है वो उसको उठा लेगा। तो अल्लाह ताला को ये तो पता था कि वो मेरा दुश्मन है, ये भी पता था कि ये मूसा अलैहिस्सलाम का भी दुश्मन है। तो ये है असल बात। तो अब जब उठा लिया, वो फेंक दिया, और अल्लाह ताला का बात तो सच्ची है, तो और एक और बात अल्लाह ताला अपनी मूसा अलैहिस्सलाम को बता रहे हैं, अपने एहसानात जो गिनवा रहे हैं कि वल्कैतु अलैका महब्बतम मिन्नी, मैंने अपनी तरफ से तुझ पर मोहब्बत तारी कर दी। वल्कैतु, मैंने उंडेल दी, डाल दी, अलैका, तुझ पर, महब्बतम मिन्नी, अपनी तरफ से मोहब्बत। इसका क्या मतलब है? असल में इसका मतलब ये है, कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम जो थे उनकी अल्लाह ताला पर ये मेहरबानी थी, यानी अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर ये मेहरबानी की हुई थी कि जो ही उनको कोई देखता था ना तो उनसे प्यार करने लगता था। जैसे बाज बच्चे ऐसे होते हैं ना कि उनको देख, उस बच्चों को देखकर प्यार बहुत आता है कि देखते ही आपके दिल में एक शफकत जो है वो पैदा हो जाती है। और तौरात की रवायात से ये भी पता चलता है कि निहायत खूबसूरत थे आप, मूसा अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसा बनाया कि देखते ही लोग इनसे मोहब्बत करने लगते थे। तो मैंने अपनी तरफ से तुझ पर मोहब्बत तारी कर दी, इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर अपनी मोहब्बत का एक परतो डाल दिया। और ऐसे ऐसे जो थे मोहने थे कि जो ही कोई इनको देखता तो इनसे मोहब्बत करने लगता। यही इसका मतलब है कि महबूबियत थी उनके अंदर, एक बड़ी रहमत, शफकत, मोहब्बत की कैफियत अल्लाह ताला ने इनके अंदर जो थी वो डाली हुई थी। तो ये थी अल्लाह की मोहब्बत। वले तुफना अला ऐनी, और ऐसा इंतजाम किया कि तू मेरी निगरानी में जो है वो पाला जाए। और देखें अल्लाह की निगरानी की शान, देखें कि अपना दुश्मन और मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन, उस घर का इंतखाब किया, कितनी बड़ी बात है ना। तो अल्लाह ताला जिस शख्स से काम लेना चाहते हैं ना, तो आप देखें कि भेड़ को भेड़ियों के अंदर रखकर भी, यानी भेड़ को भेड़िए नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो दुश्मन के घर में रहकर भी मूसा अलैहिस्सलाम जो है उसको जो है वो नुकसान नहीं पहुंच सका। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम देखें, वो भी दुश्मन के, हाँ उनकी परवरिश हुई, कोई वाकिफ नहीं थी, और उसी दुश्मन ने परवरिश की, जेल में भी भेजा, फिर उसी ने लाकर जो है वो तो कुर्सी पे बिठा दिया। तो अल्लाह जब किसी को रखना चाहे ना, उसको कोई चख नहीं सकता। और हम जो ये सोचते हैं ना कि फलां जगह चले जाएं, फलां जगह भाग जाएं, ताकि बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकें, बाज लोग कहते हैं कि बच्चों को कहीं मिलने नहीं देना, बाज कहते हैं कहीं लेके नहीं जाना, बाज कहते हैं कि क्या करें बच्चों की तरबियत के लिए ना। तो असल बात क्या है, अल्लाह ताला की जात की बेनियाजी है कि मक्का के रेगिस्तान इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए उसको जो है वो क्या बना दिया, खैरुल बिलाद, शहरों में सबसे बेहतरीन शहर बना दिया, अमन का, ईमान का और तौहीद का सेंटर उसको बना दिया कि रहती दुनिया तक आप देखें कि कभी पूरे 24 घंटों में, एक दिन रात में, कोई लम्हा ऐसा नहीं होता कि उसके गिर जो है वो, जैसे शमा के गिर दीवाने चक्कर लगाते हैं ना, कि लोग उसके गिर तवाफ ना करते हो ना। तो अल्लाह ताला ने कैसे उस जगह को इतनी पजीराई बख्शी ना। तो इससे क्या बात पता चलती है कि अल्लाह की जात के करिश्मे हैं ये, और ये अल्लाह की सिफात हैं, और ये अल्लाह ताला के काम हैं, ये अल्लाह ही जाने, है ना। तो असल बात क्या है, तरबियत के मामले में अपनी सलाहियतों और अपनी कोशिशों पर भरोसा करने की बजाय अल्लाह की जात पर करना चाहिए, और कोशिशें पूरी करनी चाहिए, पूरी तदबीर करनी चाहिए, और उसके बाद जो है ये नहीं होना चाहिए कि मैं ये कर सकती हूं, क्योंकि जहां हमने कहा कि मैं, वहीं आप फिर हार गए ना। फिर अल्लाह दिखाता है, फिर अल्लाह दिखाता है कि काफिरों के घर में तौहीद परस्त पैदा हो जाते हैं, है ना, बुत गर के घर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए, है ना, और जो तौहीद परस्त होते हैं फिर उनके घर काफिर पैदा हो जाते हैं, है ना। तो असल बात क्या है कि कोशिशों के साथ साथ आजी, इंतसारी, और अल्लाह से ये दुआ करते जाना कि अल्लाह ताला तू ही बता दे, तू ही मुझे समझा दे कि कैसे मैं अपने बच्चों की तरबियत करूं, कैसे मेरे बच्चे नेक और अच्छे बन जाएं, तू ही मुझे कोई तरीका बता दे। और कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए, और ये अल्लाह की जात की बेनियाजी है, वो जैसे चाहे कर ले। दुश्मन के घर में मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश, कितनी कितना बड़ा मौजा है ना। वल्कैतु अलैका महब्बतम मिन्नी वलितुस्ना अला ऐनी, और ऐसा इंतजाम किया कि तू मेरी निगरानी में पाला जाए। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम थे फिरौन के घर में, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तू मेरी निगरानी में था। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ताला ने एक तरफ मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसी खूबसूरत शक्ल दी जो उन्हें देखता कहते हैं कि उनसे प्यार करने लगता, उनको देखते ही दिल मोहब्बत से भर जाता था। तो इससे क्या हुआ कि कहते हैं कि जब वो संदूक खोला गया तो फिरौन ने जब देखा और उनकी बीवी ने भी देखा तो उनका दिल मोहब्बत से भर गया। उनका दिल जब मोहब्बत से भर गया तो उन्होंने फिरौन ने कहा कि ये तो एक लड़का है और इसको तो कत्ल कर देना चाहिए, और हो सकता है ये वही लड़का ना हो। तो बीवी ने कहा, साथियों ने कहा कि इतना प्यारा, कितना छोटा सा मासूम सा बच्चा है ना। इस तरह के कहते हैं कि कुछ जो है वो जुमले थे, कुछ ऐसी बातें थी कि ये अल्लाह की मोहब्बत का परतो था कि एक छोटा सा बच्चा सरकंडों की टोकरी में दरिया की मौजों में फेंका जा रहा है, यका है अचानक तन्हा बिल्कुल ही, और उसमें जो है वो अल्लाह ताला जो है वो दरिया की मौजों से लेकर उसको एक महल में पहुंचा देते हैं। तो ये है कि तदबीर जो है वो कैसे, तकदीर उस पर गालिब आ जाती है। और फिरौन की बीवी का कहते हैं कि इस रहम में बड़ा ज्यादा दखल था। औरतें वैसे भी फितरतन बच्चों से बहुत प्यार करती हैं ना, तो रहम दिल ज्यादा होती हैं। और सूरत तहरीन की आयत 11 से पता चलता है कि ये बीवी आसिया जो थी ये बहुत खुदा तरस और रहम दिल औरत थी, और इसलिए उन्होंने जो है वो फिरौन से कहा कि जो है वो मैं ये बच्चा जो है ना इसको पालना चाहती हूँ। और अब आप देखें कि मजीद अल्लाह का क्या एहसान था, इस तमशी उख्तू का, कि जब चलती जाती थी तेरी बहन, किसकी बहन, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन, वो क्यों चलती जाती थी, क्योंकि माँ ने कहा था जरा सा सा तो चल देख तो सही ये संदूक जाता कहाँ है। फतकुलू, और जब वो चलती जा रही थी फतकुलू, फिर वो कहती है वो बच्ची जो थी, वो लड़की जो थी जो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन थी, फिर जाकर कहने लगी हल अदुल्लुकुम अला मन यकफुलू, क्या मैं तुम्हें बताऊं उसका पता जो इस बच्चे की परवरिश का काम करे, जो इसकी कफालत करे। क्योंकि जब वो बच्चा फिरौन के दरबार में पहुंचा, उसके महल में पहुंचा और फैसला हो गया कि नहीं इसको कत्ल नहीं करना, मारना नहीं है, अब ये था कि वो बच्चा जो था अब फौरन हुआ कि इसके दूध का इंतजाम किया जाए। अब जब दूध का इंतजाम किया गया तो वो बच्चा दूध पीता ही नहीं था, वो महल था फिरौन का, और मलका की आप देखेंगे जेरे निगरानी, जेरे सरपरस्ती, और पूरे कहते हैं कि मुल्क की जो दाइयां थी वो जमा कर दी गई, लेकिन अब दूध जो है वो पीता ही नहीं है। अब ये मसला बड़ा टेढ़ा हो गया कि दूध ही नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम किसी भी अन्ना या दाई का दूध नहीं पी रहे थे, और कहते हैं कि ऐलान करवा दिया गया कि कोई अन्ना जो इस बच्चे को दूध पिलाए। जब ये ऐलान हुआ, ये बात आम हो गई कि वो बच्चा दूध नहीं किसी का भी पीता और किसी को ढूंढा जाए जो इसको दूध पिलाए, तब मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने वहां पे हाजिर होकर कहा कि हल अदुल्लुकुम अला मन यकफुलू, क्योंकि उसको ये तो पता चल ही गया था कि यही बच्चा बादशाह के महल में पहुंचा है। फिर ये खबर बाहर आई कि भी ये दूध ही नहीं पी रहा, तो जाकर कहा कि मैं बताऊं आपको एक दाई का पता, एक अन्ना का पता मैं बताती हूँ, और मुझे उम्मीद है कि वो उस दाइया का दूध जो है ना ये बच्चा पी लेगा। अब क्या हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने अपनी माँ का अता पता बताया, और अल्लाह ताला कहते हैं फरजा अना का इला उम्मी का कई तकर्रा आईनू आईनुहा वला तहजन, फिर क्या फरमाया कि बस हमने तुझे लुटा दिया तेरी माँ की तरफ। ये कितनी बड़ी नेमत थी कि बहन ने माँ का पता बताया और वो अन्ना बन गई। और माँ, इसका मकसद क्या था, फायदा क्या था, कई तकर्रा आईनुहा, ताकि उसकी आंखें जो हैं वो ठंडी हो जाएं, ताकि उसकी आंख जो है उसको ठंडक पहुंचे, वला तहजन, और वो रंजीदा ना हो, वो गमजदा ना हो। अब यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा समेट दिया गया, और उन बातों की तफसील यहाँ नहीं है कि कैसे कैसे हुआ, कुछ भी नहीं है, बल्कि क्या है ضروری جو بات ہے نا اس کا یہاں پر جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے. اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی طرف لوٹانے کی کیا تدبیر کی ہے نا, کیسے اللہ کی نگرانی کے ذریعے جو ہے وہ دوبارہ یہ ان کی والدہ تک جو ہے وہ پہنچ گئے نا. اور ویسے بھی اسی بات کی تفصیل جو ہے وہ سورت قصص میں بھی جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے کہ سورت قصص میں اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالی بڑا خوبصورت انداز ہے کہ جب فرعون جو ہے اس نے اس بچے کو اٹھا لیا تو وہ کیا کرنا چاہتا تھا. یہ آیت 8 سورت قصص سے یہ آپ دیکھیے, فَلْتَقَتَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. تو اس نے اس کو اٹھا لیا تھا. پھر کیا ہوا, وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ, فرعون کی بیوی فرعون سے کیا کہنے لگی, قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ, کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک بھی ہو جائے گا اور تیری آنکھ کے بھی, اس کو مارنا نہیں ہے, لا تقتلوه, اس کو قتل نہیں کیجیے, عسى أن ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون, ہو سکتا ہے جلدی ہمیں یہ فائدہ دے یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں اور وہ جانتے ہی نہیں تھے. یہ وہی والی بات ہے نا جو عزیز مصر نے سوچا تھا کہ اپنی بیوی سے کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو رکھو اپنے گھر, ہو سکتا ہے ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں کیونکہ ان کے ہاں اولاد بھی نہیں تھی. اور دوسری طرف کیا تھا, اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا, موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل جو تھا وہ ڈوبا جا رہا تھا جب وہ صندوق میں ڈال کر سمندر میں پھینکا گیا. ان قادت لتبدی بہی, قریب تھا کہ وہ راز جو تھی نا وہ بتا دیتی, کیسے, لولا اربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے, اس کے دل پر اطمینان کی جو کیفیت ہے وہ نازل نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ راز ہی اگل دیتی کہ ہائے یہ میرا بچہ کہاں کہاں کیسے. تو کیوں اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کیا, تاکہ وہ اطمینان کی ایمان کی کیفیت میں ہو. اور وقالت لاختہ, اور پھر جو اس نے کیا کہا کہ انہوں اس عورت نے اپنے بیٹے کی ماں اپنے بیٹے کی بہن موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کیا کہا, خود سے ہی ساتھ ساتھ چلتی جا, اس کے ساتھ ساتھ چل, ہے نا قصاص پیچھے پیچھے چلنا, فبصرت بہی, اور اس کو دیکھ, ان جنوب وہم لا یشرون, مطلب اس کو دیکھ سائڈوں پر اور ان کو پتا بھی نہیں تھا, وحرمنا علیہ المرادیا, یہاں پر ذکر ہے یہ آیت نمبر 12 میں کہ ہم نے حرام کر دی تھی اس پر چھاتیاں, وحرمنا علیہ المرادیا, وہ جو دائیاں اور انا آئی تھیں تو موسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے کیوں نہیں تھے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے حرام کر دیا تھا اس پر چھاتیوں کو, من قبل پہلے سے, تو جو بھی وہ آتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام دودھ بھی نہیں پیتے تھے. فقالت, پھر وہ بولی, کون بولی, موسیٰ علیہ السلام کی بہن, اور کہنے لگی, حل ادلکم علی اہل بیت, کیا ایسے گھر کا پتہ نہ میں بتاؤں تم کو, یکفلونہ, جو اس کی کفالت کریں, لکم, تمہارے لیے, وہم لہو ناسہون, اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں. فرددناہ الی امہ, پھر ہم نے لوٹا دیا, یہاں پہ لفظ کیا ہے فرددناہ, یہاں پہ کیا ہے فرجعنا کا, ہے نا, پھر اس کو لوٹا دیا اس کی ماں کی طرف, کئی تقر عینہا, تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں, ولا تحزنا, وہاں پہ کیا ہے ولا تحزنا, اور یہاں پہ بھی کیا ہے ولا تحزن, ولتعلم ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون. کتنی خوبصورت, یعنی قصے کو آپ سمجھنا چاہیں تو ارد گرد صورتوں سے بھی آپ اس کو جمع کرتے چلے جائیں, پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولما بلغ شدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین. تو قرآن کی تفسیر بیسٹ کیا ہے, ایک آیت کی تفسیر دوسری آیتوں سے ڈھونڈی جائے. تو یہاں پہ تھوڑا سا مزید آپ کو تفصیل پتا چلی کہ وہ دودھ دوسری جو انا اور دایا آئی تھی اس کا کیوں نہیں پیتے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ تاکہ تیری آنکھ ٹھنڈی ہو اور تو غم نہ کرے, اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت ہی پریشان تھی کہ میرا یہ اطمینان تو ہو گیا کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا, لیکن پھر بھی دل گھبرا رہا تھا, جیسے ہوتا ہے نا ایک پریشانی انسان پر ایک طاری ہو جاتی ہے, تو یہاں پہ اسی کا ذکر ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اور ان کی والدہ پر کتنا بڑا احسان تھا کہ فرعون اور اس کی بیوی نے بچہ جب موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے سپرد کیا موسیٰ علیہ السلام کو, تو کیا ہوا, سرکاری خزانے سے موسیٰ علیہ السلام کی تنخواہ مقرر کر دی گئی, और बच्चे समेत उसको घर भेजा गया। तो ये था कि हैरत अंगेज तरीके पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश का इंतजाम किया। माँ के पास भी चले गए, महल के जेरे निगरानी, बादशाह के जेरे निगरानी तरबियत होने लगी, माँ की आंखें ठंडी होने लगी, और साथ ही जो है उनको मौत के मुंह से भी बचाया गया, तरबियत का इंतजाम भी हुआ और तनख्वाह भी मुकर्रर हो गई। यानी माँ के तौर पर दूध तो पिलाना ही था, लेकिन दूध पिलाने की अल्लाह ताला ने मजदूरी भी मुकर्रर कर दी, तनख्वाह भी मुकर्रर कर दी। तो ये है अल्लाह ताला के एहसानात, जब अल्लाह देने लगे, जब अल्लाह नवाजने लगे, तो अल्लाह की नेमतों की कोई हद नहीं है। लेकिन बात क्या है, अल्लाह ताला चाहते क्या है, तू मांग के तो देख, तू मांग के तो देख, नवाज ना दूं तो कहना, तू मेरा होकर तो देख, तेरा हो ना जाऊं तो कहना, है ना, मेरी राह पे चलकर तो देख, मंजिल तक पहुंचाना दूं तो कहना, तू कर तो सही ना। तो असल में मैं और आप जब खुद ही सच्चे नहीं ना होते, ये मसला है, वो मसला है, नींद आती है, कमजोरी हो गई है, काम बहुत है, मेहमानदारी है, मुश्किल होती है, और इधर दर्द उधर दर्द, फासला बहुत है ना। तो जब चल पड़ते हैं, फासले सिमट जाते हैं ना, बरकत हो जाती है, हर हर सारे काम हो जाते हैं। तो असल बात क्या है कि हम सबको अल्लाह का होना चाहिए, जैसा कि होने का हक है। फिर अल्लाह ताला कहते हैं वक़तलता नफ्सन, और तूने कत्ल कर दिया एक जान को, फनजयना का मिनल गम्मी, और हमने तुझे इस फंदे से भी निकाला, इस गम से भी निकाला। और आपको पता ही है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं, उनसे जो है वो एक कत्ले खता हो गया था। और ये कत्ले खता जो था, ये क्या था कि आप इसको मजीद आगे पढ़ेंगी सूरत कसस में, आप इसकी तफसील पढ़ेंगी कि कैसे मूसा अलैहिस्सलाम से जो था वो एक कत्ल हो गया था, एक कप्ती का, फिरौन की जो कौम थी उससे ताल्लुक रखने वाले एक आदमी का कत्ल हो गया था। और यहाँ पे इशारा है उस कत्ल की तरफ, और फिर यहां से आपका मदियन की तरफ चला जाना है ना। तो यहाँ पे जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं, अल्लाह ताला उनको याद दिला रहे हैं कि याद तो करें कितने सख्त तुझ पे हालात थे, कि तुझसे कत्ल खता हुआ। और कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम से जब कत्ल हुआ तो वो अपने घर भी नहीं जा सके थे, बाजार से ही वो मदियन की तरफ निकल गए, क्योंकि उनको किसी ने आकर बताया था ना कि तेरे जो है ना दरबार में तेरे कत्ल की प्लानिंग की जा रही है ना, तो चले जाइए यहाँ से। तो फिर वो वहीं से जो थे वो निकल भागे थे। तो वो खतरनाक हालात जो हम सूरत कसस में तफसील से पढ़ेंगे, यहाँ पे जो है इसकी तरफ इशारा है। सूरत कसस की आयत 14 से 29 जो है, अगर आप उसको सामने रखेंगी तो मजीद इसका आपको जो है वो अंदाजा हो जाएगा कि उसमें जो था वो किस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम से जो था वो कत्ल हुआ। और जब कत्ल हो गया था तो आप उसकी थोड़ी सी देखें कैसे कि फवकज़हु मूसा, मुक्का बस मारा, फाकदा अलैह, और बस वो मर गया। قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم। तो इस तरह जो है उनसे कत्ल खता भी हुआ। और बाज़ औक़ात जो है वो कत्ल करना मकसूद नहीं होता, किसी को मारना मकसूद नहीं होता, मदद मकसूद होती है। तो उसे जो है वो कोई कत्ल ही हो जाए तो कैसे हो जाता है, जैसे कहते हैं कि कोई गन साफ कर रहा था और जो है वो उससे जैसे भाई साफ कर रहा था तो छोटा भाई उसकी गन से जो है वो फौत हो गया। और इसी तरह गाड़ी के नीचे कोई आके मर जाए, है ना, जैसे बहरीन में हमारे जानने वाले थे, उनकी बहुत ही यूथ की लड़की थी, मतलब औरत थी, और उसका उसके शोहर से एक बच्चा आके फौत हो गया था उसकी गाड़ी के नीचे, और माँ बाप डॉक्टर थे और एक ही उनका वो बेटा था। तो बाज वक्त ऐसा हो जाता है कि इंसान चाहता नहीं, और वो बहुत ही कैसी कैफियत तकलीफ में इंसान उस वक्त होता है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला उसका जो है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। और ये क्या मकसद है इशारे करने का, अपनी नियमतों का एहसास दिलाना। वफतन्ना का फुतूना, और फिर कहा और तुझे मुख्तलिफ आजमाइशों में से गुजारा। गोया के फरमाया ये कि ये जो था ये कत्ल का होना, ये तेरे लिए बड़ा गम था, और भी बड़ी आजमाइशों से तुझे जो है वो नवाजा। और ये जो आजमाइशें थी, अल्लाह ताला ने क्यों मूसा अलैहिस्सलाम को इन आजमाइशों में से गुजारा, इसकी क्या वजह थी? तो असल में इसकी वजह यह थी कि आप देखें कि फतन्ना का फतूना, फतन के मानी होते हैं जांचने और परखने के। सुनार जब सोने की कठाली में डालकर सोने को डालते हैं, तो उसको जब पकाते हैं, तो मकसद क्या होता है? खोट को जो है वो अलग करना और जो खालिस है उसको अलग करना। इसी तरह ये लफ्ज अल्लाह ताला इम्तहान के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, कि जब अल्लाह ताला किसी का इम्तहान लेते हैं, किसी को अपने खास काम के लिए मुंतखब करना चाहते हैं, तो अल्लाह उसको फिर आजमाइशों में डाल देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने आजमाइशों में डालकर अच्छी तरह परखा, और मकसद क्या था कि जिस खास काम के लिए मैंने इसको मुंतखब किया है, आप उस खास काम के पूरे अहल हो जाएं, आप उसके तैयार हो जाएं। अब मिस्र में इनकी जिंदगी वो भी बड़ी आजमाइश की जिंदगी थी, और वहां से जिन हालात से निकले वो भी बड़े खतरनाक हालात थे, कि जान का ही खतरा था। और आप पदाए से भी देखें कि पैदा हुए तो तलवार उनकी गर्दन पर थी, फिर दुश्मन के दरबार में, दुश्मन के महल में हर वक्त ही खतरे में, फिर उसके बाद कत्ल का होना, फिर वहां से निकलना, परदेश, कोई अपना नहीं है, कैसे खड़े हुए हैं और अल्लाह से कह रहे रब्बे नीली मान जलता इलैया मिन खैरिन फकीर, कि मैं तो फकीर हूँ, जरूरतमंद हूँ, तू अपनी खैर मुझ पर नाजिल कर दे। फिर वो शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां जो है उनके जानवरों को जो पानी पिलाते हैं, और फिर वो घर भी मिल जाता है और दर भी मिल जाता है, बीवी भी मिल जाती है ना। मदियन जाकर 8 या 10 साल वहां के पहाड़ों में, जंगलों में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां चराते हैं, वहां से निकलते हैं, रास्ते में होते हैं तो पैगंबरी मिल जाती है। तो ये सारे जो हालात आए हैं पेश, जो आपने सूरत आराफ में पढ़े, इस सूरत में पढ़ रहे हैं, आगे सूरत कसस में भी आप पढ़ेंगी, तो विलादत से लेकर पैगंबरी मिलने तक के जो पूरे हालात हैं, तो ये एक इम्तहान है। और इम्तहान भी कैसा कि एक से एक बढ़कर, एक से एक जो है वो बड़ा इम्तहान। तो एक बात याद रखें इस सारी बात से, वफतन्ना का फतूना, मेरी और आपकी अमली जिंदगी के लिए भी एक बड़ा सबक मिलता है, और वो क्या है कि इम्तहानात जो है ना तरबियत का लाजमा है। इसको नोट कर लें, इस बात को, आजमाइशें और जो इम्तहान हैं ये इंसान की तालीम और तरबियत के लिए लाजमी हैं। अल्लाह ताला इम्तहान के जरिए इंसान की आला जो सलाहियतें हैं उनको परवान चढ़ाते हैं। तो आजमाइशें और इम्तहान मांगने तो नहीं चाहिए, लेकिन जब आ जाए तो उनसे घबराना भी नहीं चाहिए, फिर उनसे भागना भी नहीं चाहिए। अगर कोई आजमाइशों और इम्तहानों से भागे ना या घबराए, तो इसका ये मतलब है कि वो अपनी तरबियत से घबराता है, इसका ये मतलब है कि वो अपनी तालीम से भागता है। इम्तहान और आजमाइशें ये डरने और घबराने की चीज थोड़ी है। कि इम्तहान का पेश आना जो है इस बात की अलामत नहीं कि आप नाकाम हो गए या मैं नाकाम हो गई। आजमाइश का आना इस बात की अलामत नहीं कि जो है नाकाम हो गए हैं, शिकस्त हो गई है। इम्तहान जो है ये तो जो भी मुसीबतें और परेशानियां आती हैं ये किस लिए आती हैं? तरबियत के लिए आती हैं। और दूसरी अहम बात ये है कि इनामात और करम की शक्ल में आती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला अपने जिससे जितना ज्यादा प्यार करता है ना, उसको उतना ही ज्यादा आजमाइशों और तकलीफों के अंदर डाल देता है। और अल्लाह ताला इम्तहान और मुसीबतें देकर बंदे के सब्र की तरबियत करता है, बंदे के ज़र्फ की तरबियत करता है, और बंदे के शुक्र को परवान चढ़ाता है। और ये सब्र और शुक्र की जो आला सिफात हैं, जितनी भी इंसानी सिफात है ना, ये दो सिफात पर डिपेंड करती हैं, एक सब्र पर और दूसरी शुक्र पर। और इन दोनों सिफतों की तकमील, इन दोनों सिफतों की तश्कील और तकमील, ये उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक इम्तहानों में से ना गुजारा जाए। और जब सब्र की और शुक्र की तश्कील और तकमील हो जाती है, तो फिर इंसान नफ्से मुतमईना हासिल कर लेता है, नफ्से मुतमईना की बादशाहत उसको मिल जाती है। इसी को फिर अल्लाह ताला कहते हैं रादियतम मर्दिया। तो ये एक नुक्ता है जिसको याद रखने की जरूरत है कि सब्र और शुक्र के इम्तहानों में ज्यादा मुश्किल इम्तहान कौन सा होता है? शुक्र का इम्तहान और सब्र का इम्तहान। यानी अब फिर उलमा के दरमियान इसमें भी बहस रही कि सब्र का इम्तहान मुश्किल है या कि शुक्र का। बजाहिर तो लगता है कि सब्र का इम्तिहान मुश्किल है, क्यों? बीमारी आ गई, जॉब नहीं है, हालात बड़े सख्त हैं, औलाद की तरफ से तकलीफ है और रिश्तेदारों की तरफ से तकलीफ है और कोई भी ऐसे हालात पेश आ गए, जैसे खुदा ना खास्ता शुगर हो गई है, हार्ट का, दिल का कोई मरीज है, कोई किसी को खुदा ना खास्ता कैंसर की खबर मिल गई और कोई भी नागहानी हालात, तो ऐसे में जो है वो होता क्या है कि हम कहते हैं कि बड़ी मुश्किल में है ना, चेहरे से भी नजर आने लगता है वो इम्तहान की जो चक्की में पिसता है इंसान और जो घर वाले पिस रहे होते हैं, तो चेहरे से भी वो बशाशत खत्म हो जाती है, आंखों के गिर्द भी हल्के पड़ जाते हैं, है ना, और बहुत मुस्कुराने वाले मुस्कुराना भूल जाते हैं, है ना। तो इसमें जो है एक बात आप याद रखें कि कुरान की रोशनी में भी अगर मताला किया जाए ना कि कौन सा इम्तहान मुश्किल है, सबर का या शुक्र का, तो सबर का, सबर की बजाय शुक्र का इम्तहान कहते हैं कि ये ज्यादा मुश्किल है और इसमें पास होने वालों का औसत बहुत कम है। शुक्र का जो इम्तहान है ना, इसमें पास होने वालों का रेशो बहुत कम है, क्योंकि मुसीबतें जब आती हैं तो साबित कदम लोग रहते हैं। हाँ, कुछ लोग निकल आते हैं जो मुसीबतों पर साबित कदम रहकर जो है वो ईमान सलामत लेकर निकलते हैं, लेकिन नेमतें पाकर ना बहकने वाले ज्यादा होते हैं। नेमतों के जब अंबार लगते हैं तो कम लोग हैं जो बहकने से महफूज रहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला सूरत सबा आयत 18 में कहते हैं वकलीलुम मिन इबादी यशकूर, कि मेरे बंदों में से कम लोग हैं जो कि शुक्र अदा करने वाले हैं। और यही वो बात थी जो कि वो मक्का के गिर्द तवाफ करने वाला वो बद्दू ये कह रहा था कि अल्लाह ताला मुझे भी कम लोगों में शामिल कर ले, थोड़े लोगों में शामिल कर ले। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह उन्होंने अपना दर्रा जो था वो जो लाठी जो थी फौरन निकाल लेते थे, तो उसको जो है वो धमकाया और कहा कि ये अजीब दुआ है जो तुम मांगते हो, ये तो मैंने आज तक कभी सुनी नहीं। तो फिर उस बद्दू ने यही तो कहा था कि अमीरुल मोमिनीन अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि मेरे बंदों में कम बंदे हैं जो शुक्र अदा करते हैं, थोड़े बंदे शुक्र अदा करते हैं, मैं अल्लाह से कह रहा हूँ कि मुझे उन थोड़े बंदों में शामिल कर ले। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह कहने लगे कि ए उमर, एक बद्दू भी तुझसे ज्यादा इल्म रखता है, कुरान के बारे में ज्यादा जानता है। तो फिर बात का निचोड़ क्या है, ये वाली बात वफतन्ना का फतूना कहने को, ये एक लंबी आयत का छोटे से ये दो हरफ हैं, है ना, ये दो लफ्ज हैं, लेकिन इस पर किताबें लिखी जा सकती हैं कि, और बात क्या है कि इम्तहान के मामले में असल डर इस बात का नहीं होना चाहिए कि फिर 15 पारों का इम्तहान होने लगा, है ना, फिर 5 पारों का इम्तहान, कभी 10 पारों का इम्तहान, कभी रूटवट। अच्छा, सिर्फ रूटवट और लफ्जी तर्जमा आएगा ना, तफसीर तो नहीं ना आएगी, आप तो एकदम दूसरे सवाल ही पूछ लेती हैं, फिर आप दूसरे सवाल तो नहीं ना पूछेंगे, फिर सरप्राइज टेस्ट तो नहीं ना होगा, अचानक तो नहीं ना होगा, अच्छा हिस बस टीचर पढ़ाती रही, टेस्ट तो नहीं ना होगा, है ना। तो हम बहुत तसल्ली करते हैं ना, तो इसमें डरने की बात नहीं है। कहते हैं ज्यादा डरने की बात यह है कि इम्तहान ही से किसी को खारिज कर दिया जाए, कि तुमने इम्तहान ही नहीं देना, उसका इम्तहान ना ली जाए, क्योंकि सुन्नत इलाही ये है कि जो शख्स बार बार फेल होता है तो बसा औकात अल्लाह ताला फिर उसको अपने इम्तहान से महरूम कर देता है। कैसे? आप पीछे पढ़ चुकी सूरत आराफ में, ये फिर कुरान की इस्तेलाह में उसको इम्हाल कहते हैं, है ना, और ये सख्त तरीन सजा है इस दुनिया में किसी फर्द या कौम को अल्लाह ताला की तरफ से दी जाती है। इम्हाल क्या है कि बस फिर अल्लाह ताला इम्तहान नहीं उसे लेते, उसकी रस्सी को दराज कर देते हैं और वो जिस रास्ते पे चाहता है वो चलता चला जाता है और फिर उसके लिए उम्मीद के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, है ना। तो ये है असल बात, वफतन्ना का फतूना, के अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि ए मूसा, हमने तो तुझे मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजारा, और जिक्र हो रहा है एहसानात का और बात की जा रही है कि इम्तहानों में से गुजारा। फलबिस्त सिनीन फी अहले मदियन, और तू मदियन के लोगों में कई साल तक ठहरा रहा, थोड़े दिन नहीं, बड़ा अरसा तू मदियन के अंदर जो है वो रहा। तो मदियन के अंदर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम जो हैं वो कितना रहे, यहां तो इसकी कोई तस्री नहीं है। सूरत कसस में अगर आप पढ़ती हैं तो पता चलता है कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के साथ जो इनका मुआयदा हुआ था, कहते हैं कम से कम 8 साल या ज्यादा से ज्यादा 10 साल वहां उन्होंने गुजारे। तो मुफस्सरीन की ये राय है कि उन्होंने फिर उनकी जो है वहां पे रहकर जो है वो बकरियां चराई। तो बकरियां चराना जो है ना, ये भी एक ट्रेनिंग थी, क्योंकि बकरियां चराने के, जानवरों को चराने के नतीजे में इंसान के अंदर बड़ा एक हौसला पैदा हो जाता है, बड़ा जर्फ बढ़ता है, और बड़ा इंसान जो है वो सब्र सीखता है। फल बिस्तरी नफी अहले मदियन तुम मजे ताला कदरी या मूसा, फिर फरमाया फिर अब ठीक अपने वक्त पर तू आ गया है ए मूसा। इसका क्या मतलब है कि ऊपर के तमाम हालात और वाकयात का हवाला देने के बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जो कुछ हुआ ये हमारी स्कीम के मुताबिक, हमारे मुकर्रर किए हुए वक्त के मुताबिक, हमारे तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक हुआ कि तमाम मराहिल से गुजारने के बाद ठीक उस वक्त, इस वक्त पर जो हमने तुम्हारी यहाँ की हाजिरी के लिए पहले से मुकर्रर कर दिया था, तुम यहाँ पे पहुंच गए। और वो वक्त किस चीज का था कि तुम्हें मैं नबी बना लूं, तुम्हें मैं नबूवत और रसालत से सरफराज कर दूं। तो मतलब क्या है सारी बात का, तुम मजे ताला कदर या मूसा की विलादत से लेकर अब तक हर मरले पर तेरी हिफाजत की है, हर मरले पर तेरी निगरानी की है, तुम्हारे लिए अपने मंसूबे तुम्हारे और अपने दोनों दुश्मनों से पूरे कराए, हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ रहा, और जो जिम्मेदारी वो तुम्हारे सपोर्ट कर रहा है अब इसके अदा करने के लिए वो खुद तेरे लिए राहें खोलेगा, खुद तेरे लिए रास्ता आसान कर देगा, आप क्यों परेशान होते हैं। सुम मजे ताला कदर या मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम का जो है वो दुआएं मांगना, जो उन्होंने ये आयत नंबर 25 से 35 तक मांगी है, उसमें शरह सदर की दुआ और काम को, नबूवत के काम को आसान करने की दुआ, और गिरा जबान की खुल जाए वो दुआ, और अपने भाई को साथ शामिल कर दिया जाए वो दुआ मांगी, और आखिर में जो बात कही कि इन्नका कुंता बिना बसीरा, कि तूने तो हमारी हमेशा निगरानी की है। तो अब, और अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत जवाब दिया कि मैंने तो तुझे कभी भी नहीं छोड़ा, विलादत से लेकर अब तक तुझे तो इन सारे मराहिल में से गुजारा है इसलिए कि तुझे इस खास काम के लिए मैं तैयार करना चाहता था। तो कितनी खूबसूरत आयतें हैं, बजायर लगता है कि मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया गया है, लेकिन आप देखें कि मेरी और आपकी जिंदगी के एक एक लम्हे के लिए इसमें कितने खूबसूरत फल और फूल है, कितने खूबसूरत उसूल है कि आप ढह ना जाए, आप गिर ना जाए, आप परेशान ना हो जाए, रोजगार के मसाइल हैं, औलाद आपके पास नहीं है, औलाद है तो नाफरमान है, घर में कोई आजमाइश है, कोई बीमारी है, कुछ भी किसी भी तरह की यहाँ पे या वहां पे, और आजमाइशों की चक्की में जब इंसान पिसा जाता है तो बिलबिला उठता है, परेशान हो जाता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि नहीं, तेरा करम के चुना है इम्तहान के लिए, है ना, गमे जिंदगी गमे बंदगी गमे जावेदा गमे दो जहां, मेरी हर नजर तेरी मुंतजर, तेरी हर नजर मेरा इम्तहान। तो अल्लाह ताला जो इम्तहान लेते हैं तो किस लिए, कि अपने अपने करीब करने के लिए, ये भी अल्लाह ताला के प्यार के अंदाज हैं। तो जिनके रुतबे हैं सिवा, उनकी सिवा मुश्किल है, तो जिनके रुतबे ऊंचे अल्लाह करना चाहता है ना, फिर अल्लाह उनसे इम्तहान भी बड़े बड़े लेता है, बड़े बड़े इम्तहान लेता है। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता करे और बेहतरीन मुसलमान बनाए। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका वनतूबु इलैक।